देखो और अच्छी प्यारी सी सूरत शुरू हो रही है, सूरत दुखान 44 नंबर की सूरत है, 59 आयतें हैं। इसका नाम दुखान क्यों है, दो तीन चीज़ें इसमें आती हैं, जहाँ आयतें आएंगी तो हम पढ़ लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सूरत के बारे में एक हदीस नोट कीजिए कि अबू हुरैरा फरमाते हैं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जो शख्स रात हामीम दुखान पढ़ेगा वो इस हाल में सुबह करेगा कि इसके लिए 70,000 फरिश्ते दुआए मगफरत कर रहे होंगे। तिर्मिज़ी की रिवायत है 2999, इसकी सनद चेक कर लीजिए और अगर ठीक है तो इसको पढ़ सकते हैं आप लोग भी। और साथ ही पहले रुकू में आयत 1 से 29 है, रुकू नंबर 14 है, रुकू नंबर 14, अल्लाह ने अम्बिया और सहीफे हमारी हिदायत के लिए भेजे हैं, सिर्फ पढ़ने पढ़ाने के लिए नहीं। हामीम वल किताबिल मुबीन, कसम है इस वजाहत वाली किताब की, यकीनन हमने इसे बबरकत रात में उतारा है, बेशक हम डराने वाले हैं। इस रात में हर एक मजबूत काम का फैसला किया जाता है, हमारे पास से हुक्म होकर हम ही रसूल बनाकर भेजने वाले हैं, आपके रब की मेहरबानी से वही है सुनने वाला जानने वाला। लैलतुल कद्र की बात है, वही बात जो सूरत कदर में इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतुल कद्र कहा गया वही इधर है। कुछ लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग तो हुई, लेकिन ये रात है, इन रातों में जो भी रात आपको मिले गनीमत जानिए, क्या बड़ी बात है कि अल्लाह फैसले कर दे। सारे साल के आपके फैसले होंगे लैलतुल कद्र में, तो आप भी एक फैसले का फॉर्म उसी दिन फिल कर ले। वो कौन सा फैसला, जिम ज्वाइन करने का, यानी आपके अगले पूरे कोर्सेज ताक रात में डिसाइड किए। और मैंने दुआ की अल्लाह मैयद नबी रूहुल कुदस, अल्लाह रूहुल कुदस से हमारी तायद कर ले। चलिए सुनते हैं आयत 7 से, जो रब आसमानों का और ज़मीन का और जो कुछ इनके दरमियान है, अगर तुम यकीन करने वाले हो, कोई माबूद नहीं इसके सिवा, वही जिंदा करता है और वही मारता है, वही तुम्हारा रब है और तुम्हारे अगले बाप दादों का, बल्कि वो शक में पड़े खेल रहे हैं। आप इस दिन के मुंतजिर रहें जबकि आसमान जाहिर धुआं लाएगा जो लोगों को घेर लेगा, ये दर्दनाक अजाब है, कहेंगे कि हमारे रब ये आफत हमसे दूर कर, क्या हम ईमान कबूल करते हैं, इनके लिए अब नसीहत कहाँ, हालांकि खोल खोल कर बयान करने वाले पैगंबर इनके पास आ चुके, फिर भी उन्होंने इनसे मुंह फेरा और कह दिया कि सिखाया पढ़ाया हुआ बावला है, नाउसुबिल्ला। हम अजाब को थोड़ा दूर कर देंगे तो तुम फिर अपनी पहली हालत पर आ जाओगे, यानी जब कुछ दिन कोई अजाब, कोई पकड़, कोई जलजला तूफान नहीं आता, तुम फिर पहले जैसे हो जाते हो। जिस दिन हम बड़ी सख्त पकड़ पकड़ेंगे, बिल यकीन हम बदला लेने वाले हैं, यकीनन इनसे पहले हम कौमे फिरौन को भी आजमा चुके हैं, जिनके पास अल्लाह का बाइज्जत रसूल आया कि अल्लाह के बंदों को मेरे हवाले कर दो, यकीन मानो कि मैं तुम्हारे लिए अमानतदार रसूल हूँ, और तुम अल्लाह ताला के सामने सरकशी ना करो, मैं तुम्हारे सामने खुली दलील लाने वाला हूँ, मैं अपने और तुम्हारे रब की पनाह में आता हूँ इससे कि तुम मुझे संसार कर दो, और अगर तुम मुझ पर ईमान नहीं लाते तो मुझसे अलग ही रहो। फिर उन्होंने अपने रब से दुआ की, ये सब गुनाहगार लोग हैं, हमने कह दिया कि रातों रात तू मेरे बंदों को लेकर निकल, यकीनन तुम्हारा पीछा किया जाएगा। तो मुझसे तो वहीं रुक जाते हैं ना, अल्लाह ताला ये क्या पीछा करेंगे दुश्मन पे, मैं कहाँ जाऊँगा, सवाल जवाब शुरू, समय ना बताना, फौरन मान लेते हैं। तू दरिया को साकिन छोड़कर चला जा, बिलाशुबा ये लश्कर गर्क कर दिया जाएगा, वो बहुत से बागात और चश्मे छोड़ गए और खेतियाँ और राहत बख्श ठिकाने, सोचिए, और वो आराम की चीज़ें जिनमें ऐश कर रहे थे इसी तरह हो गया, और हमने इन सब का वारिस दूसरी कौम को बना दिया, बस ना तो इन पर आसमान और ज़मीन रोए और नई नई मोहलत मिली। खुद से पूछिए, जब मैं मरूंगी तो ज़मीन के टुकड़े रोएंगे, आसमान के टुकड़े रोएंगे, कौन रोता है? आपको पता है जहाँ से आपकी नेकियाँ जाती हैं और जिधर से आपका रिस्क उतरता है या आपके नेक अमाल जाते हैं, ये ज़मीन मा कद्दम हुआ सारम की सूरत में आपकी मेरी गवाहियाँ ले रही है, ये हमारे प्रिंट्स ले रही है, इफ़ेक्ट्स भी हैं और प्रिंट्स भी हैं। देखिए ज़रा मुबारका जो थी बरकत अली रात, तो इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरान 185 बकरा और लैलत मुबारका सूरह दुखान, ये तीनों एक ही रात के तस्करे हैं। हज़रत आयशा ने अल्लाह के नबी से पूछा था कि अगर मैं लैलतुल क़द्र को पा लूँ तो क्या कहूँ, तो आपने फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़ाफ़ु अन्नी, ये दुआ मांगा करो। ये मुस्नद अहमद की रिवायत है 4016। क्या आयशा के पास और कुछ नहीं था मांगने को, आप गिनिए ज़रा, आयशा की औलाद थी, घर में दो दो महीने चूल्हा नहीं जलता था, कुर्सियाँ थी, मेज़ थे, रुपए डॉलर पाउंड इसका तो सवाल ही नहीं, कुछ तो कह देते अल्लाह के नबी। 3 दफ़ा एक ही लफ्ज़ है, अफोफ अल अफ और फाफो, माफ़ी 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 माफ़ी। ये थी तरजीहात का फ़र्क। अल्लाह हमारी भी ऐसी ही कर दे, आखरत की फ़िक्र लगा ले, दुनिया की सारी ख़त्म होगी। देखिए बच्चों की आखरत की फ़िक्र करें तो बच्चों के दुनिया के मसले बहुत छोटे हो जाएंगे इंशाल्लाह। वही मिसाल याद रखे बाघ वाली, कीड़े मकोड़ों से भी आप बच्चों को डराते हैं, शेर आ जाए या कह लीजिए कि भेड़िया आ जाए तो आपको सब भूल जाता है। आप नए बच्चों के दुनिया के गम छोड़ दें, आज से छोड़ दें, फौरन छोड़ दें, बस एक फिक्र कर लें कि ये आखरत इनकी ठीक हो जाए। फिर आगे बाद अल्लाह का लफ्ज़ आयत 18 में जो आया, क्या पता चला हर बंदा सिर्फ अल्लाह का गुलाम होता है। किसी इंसान को इस बात की इजाज़त नहीं कि वो किसी को अपना गुलाम बनाए, तो क्या आज का इंसान अपने नफ्स का बंदा और ब्रांड का गुलाम तो नहीं बन गया। फिर आयत 20 में मुखालफत वर्सेस मुआवनत, हर हक वाले को 3 चीज़ें ज़रूर मिलेंगी। नंबर एक, मुखालफत ज़रूर होगी, पक्की बात है। फिर अल्लाह की मदद आएगी और फिर मुआवनत भी होगी। शुरू में घर वाले आपकी मुखालफत करेंगे, फिर अल्लाह की मदद आएगी, फिर वो आपके मुआविन बन जाएंगे इंशाल्लाह। फिर आए 24 से, हक के रास्ते के राही कैसे होते हैं। नबियों की तरह सहाबा किराम ने कभी ओहदों और दौलत की वजह से हक को नहीं छोड़ा, कभी खौफ नहीं खाया, हक पे जमे रहे, अल्लाह के एक हुक्म पर तैयार रहते, न दिन देखते न रात देखते। अल्लाह हमें भी ऐसा बना दे ताकि रदी अल्लाह अन्हो का लकब हमें भी मिल जाए। क्या करना है? रब पे यकीन रखना है, ज़िंदगी और मौत का मालिक अल्लाह, इस पे यकीन रखना है। दीन इस्लाम में शक नहीं करना, सरकशी नहीं करनी। रुकू नंबर 15, 30 से 42, आखरत को सामने रख के ज़िंदगी गुजारनी है। वलकद नज्जैना बनी इसराइल, और बेशक हमने ही बनी इसराइल को सख्त रुस्वाकुन सज़ा से निजात दी जो फिरौन की तरफ से हो रही थी। फिल वाक़े वो सरकश और हद से गुजर जाने वालों में से था, और हमने जानते बूझते दानिस्ता तौर पर बनी इसराइल को दुनिया जहान वालों पर फोकियत दी, और हमने ही ने ऐसी निशानियाँ दी जिनमें सरी आजमाइश थी। ये लोग तो यही कहते हैं, आखिरी चीज़ यही हमारा पहली बार दुनिया से मर जाना है और हम दोबारा उठाए जाने वाले नहीं। अगर तुम सच्चे हो तुम्हारे बाप दादाओं को ले आओ, यदि कब्रें फूटें और उसमें हमारे बुजुर्ग आएं, बाहर आए और बताएं कि ये जो कहते थे सच था। क्या ये लोग बेहतर हैं या तुब्बा कौम के लोग और जो इनसे भी पहले थे? हमने इन सबको हलाक कर दिया, यकीनन वो गुनाहगार थे। हमने ज़मीन और आसमान और इनके दरमियान की चीज़ों को खेल के तौर पर पैदा नहीं किया, बल्कि हमने इन्हें दुरुस्त तदबीर के साथ ही पैदा किया है, लेकिन इनमें से अक्सर लोग जानते नहीं। यकीनन फैसले का दिन इन सब का तय शुदा वक्त है, उस दिन कोई दोस्त किसी दोस्त के कुछ काम भी ना आएगा और ना इनकी मदद की जाएगी, मगर जिस पर अल्लाह की मेहरबानी हो जाए वो ज़बरदस्त और रहम करने वाला है। क्या सीखा? हद से नहीं गुजरना, मौत के बाद की ज़िंदगी पे यकीन रखना है, फैसले के दिन के बारे में जानना है। आखरत में कोई किसी के काम नहीं आएगा, इसीलिए फिर आज से ही खुद अपने लिए अमल करना है। रुकू नंबर 16, 16, 43 से 59 आखिरी रुकू है सूरह दुखान का। जहन्नुम से बचना ही बड़ी कामयाबी है। इन्ना शजरत ज़क्कूम, बेशक ज़क्कूम यानी थोर का दरख्त गुनाहगार का खाना है, जो मिसल तलछट के है और पेट में खोलता रहता है, मिसल तेज़ गर्म पानी के। हुक्म दिया जाएगा कि इसको पकड़ो और खींचते हुए दोजख के बीचों बीच में ले आओ, फिर इसके सर पर सख्त गर्म पानी का अजाब बहाओ। इससे कहा जाएगा कि चखता जा, तू तो बड़ी इज्जत वाला था। जुक, लफ्ज़ देखिएगा बाद में जाकर आप, जुक बस खामोशी, चख, इंसल्टिंग वे है कि दुनिया में तू बड़ा इज्जत वाला बनता था, तुझे बड़े लाड थे और तू सोचता था कि मैं तो कोल्ड ड्रिंक्स पीता और फलां वाला हूँ, यहाँ तेरे लिए पीप है, जख्मों की धोवन है, और जो कुछ भी तू बुरे से बुरी चीज़ सोच सकता है तेरे लिए अल्लाह ने वो तैयार कर रखा है। क्या इस बुरे अंजाम से खुद को और लोगों को बचाने के लिए हमने कोशिश नहीं करनी? इंशाल्लाह करनी है, मगर कितनी? जितना उसका हक है। हम कोशिश कर रहे हैं और करते हैं, लेकिन उसको बढ़ाकर अल्लाह के हक के मुताबिक करने की ज़रूरत है। فرمایا تو تو بڑا عزت والا بڑے اکرام والا تھا، یعنی تجھے دنیا میں بڑی اپنی عزت پیاری تھی، بڑا پریسٹیجیس میٹر تھا تیرا، آج دیکھ تیری کیا بے عزتی ہوتی ہے، کیا درگت بنتی ہے، یہی وہ چیز ہے جس میں تم شک کیا کرتے تھے۔ اس کے برعکس بے شک اللہ سے ڈرنے والے امن چین کی جگہ میں ہوں گے، باغوں اور چشموں میں باریک اور دبیز ریشم کے لباس پہنے ہوئے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، یہ اس طرح کہ ہم بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے ان کا نکاح کر دیں گے۔ حور سے بھی نکاح ہوگا، گرل فرینڈشپ نہیں ہوگی۔ نوٹ کروائیے گا یہ بات ان کو جو کہتے ہیں شادی کی اب کیا ضرورت ہے جب سب کچھ ویسے ہی مل رہا ہے۔ دل جمعی کے ساتھ وہاں ہر طرح کے میووں کی فرمائشیں کرتے ہوں گے، اور وہاں وہ موت کو چکھنے والے نہیں، ہاں مگر پہلی موت جو آ چکی، یعنی اب دوبارہ موت نہیں ہے، اور انہیں اللہ نے دوزخ کی سزا سے بچا دیا۔ یہ صرف تیرے رب کا فضل ہے، یہی ہے بڑی کامیابی، ہم نے اس قرآن کو تیری زبان میں آسان کر دیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ فانتظر، اب تو انتظار کر، منتظر رہ، یہ بھی منتظر ہیں۔ تو کیا پتہ چلا، سورت دخان ایک پیغام دے رہی ہے آپ کو، مجھے مجاہدوں کا انجام کیا ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں تم سے کسی کوڑے کی جگہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں اس سے بہتر ہے، یعنی اگر کسی کو یہ مل جائے تو، اور نہ یقین آئے یا اگر جاننا چاہو تو یہ پڑھ لو، فمن زخزحن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ ہر جان موت کا ذائقہ چکھنے والی ہے، قیامت کے دن تم اپنے پورے پورے اجر دیے جاؤ گے، بس جو شخص آگ سے ہٹا دیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا بے شک وہ کامیاب ہوا، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ یہ سنن دارمی کی روایت تھی 2855۔ کیا سیکھا؟ جہنم کے عذاب سے بچنا ہے، جنت میں جانے کو مقصد بنانا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے، نصیحت حاصل کرنی ہے، اور گناہوں سے بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس کی توفیق دے۔ آگے ہے جی سورت جاسیہ، 1 سے 37 تک آیتیں ہم دیکھیں گے، ترتیب میں 45 نمبر سورہ۔ جاسیہ ایک کیفیت ہے، منہ کے بل گری ہوئی، قیامت کے دن قومیں اللہ کے خوف سے جیسے جھکیں گی، اور دنیا میں کیا ہوا اس کا حالات ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ 17 نمبر کو ہے، 1 سے 11، ٹاپک ہے تباہی ہے جھوٹے بدعمال شخص کے لیے۔ حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین۔ حامیم، یہ کتاب اللہ غالب حکمت والے کی طرف سے نازل کی ہوئی ہے، آسمانوں اور زمین میں ایمانداروں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں، اور خود تمہاری پیدائش میں اور ان جانوروں کے پھیلانے میں یقین رکھنے والی قوم کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں، اور رات دن کے بدلنے میں، اور جو کچھ روزی اللہ تعالیٰ آسمان سے نازل فرما کر زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے اس میں، اور ہواؤں کے بدلنے میں بھی، ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں نشانیاں ہیں۔ یہ ہیں اللہ کی آیتیں جنہیں ہم آپ کو راستی سے سنا رہے ہیں، بس اللہ تعالیٰ اور اس کی آیتوں کے بعد یہ کس بات پر ایمان لائیں گے، ویل اور افسوس ہے ہر ایک جھوٹے گناہگار پر۔ اور جو آیتیں اللہ کی اپنے سامنے پڑھی جاتی ہوئی سنے پھر بھی غرور کرتا ہوا ہو، اس پر اڑا رہے کہ گویا سنی انسنی ہی تو نہیں، تو ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خبر سنا دیجئے۔ اپنے لیے دعا کریں، صرف ہمارے کان یہ ترجمہ نہ سن رہے ہوں، ہمارے دل بھی اس میں انوالو ہوں۔ جب وہ ہماری آیتوں میں سے کسی آیت کی خبر پا لیتا ہے تو اس کی ہنسی اڑاتا ہے، یہی لوگ ہیں جن کے لیے رسوائی کی مار ہے، اور ان کے پیچھے دوزخ ہے، جو کچھ انہوں نے حاصل کیا تھا وہ انہیں کچھ بھی نفع نہ دے گا، اور نہ وہ کچھ ان کے کام آئیں گے جن کو انہوں نے اللہ کے سوا کارساز بنا رکھا تھا، ان کے لیے تو بہت بڑا عذاب ہے، یہ سر سے پاؤں تک ہدایت ہے، اور جن لوگوں نے اپنے رب کی آیتوں کو نہ مانا ان کے لیے بہت سخت دردناک عذاب ہے۔ کائنات کی نشانیاں توحید کی گواہی دیتی ہیں، کائنات کی نشانیوں کو دیکھ کر ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ آخر اس کا خالق کون ہے؟ اللہ اپنی کائنات میں تدبر والی سیر کروانا چاہتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ایک ایمان والے کی زندگی اللہ سے باتیں کرتے کرتے گزر جاتی ہے، نماز پڑھتا ہے تو اللہ سے باتیں کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے تو اللہ اس سے باتیں کرتا ہے، پھر اسی طرح سے رات اور دن کی بات دیکھیے کہ رات نہ ہوتی تو انسان کیسے سکون حاصل کرتا، رات غم کی علامت ہے، انسان کی زندگی میں دکھ اور درد تو آئیں گے، تو رات کے بعد صبح ضرور آتی ہے، جمے رہیے अल्लाह आपको गम के बाद खुशी, बीमारी के बाद सेहत ज़रूर देगा। यही चीज़ें तो हमें डिप्रेशन से निकालती हैं। फिर दिन गम छुट जाने की अलामत है, हर गम के बाद खुशी आएगी। इसलिए हर दिन के लिए नए जज्बे से अपने कामों को सूरज की सी एनर्जी की तरह कीजिए। क्या हर दिन सुबह उठकर नए सिरे से अपने आप को एनर्जेटिक फील करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आप देखिए, इसमें बारिश की बात हुई। असल रिस्क तो बारिश है, इसकी वजह से फसलें और बागात उगते हैं। बारिश उम्मीद की अलामत है, किस तरह मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा कर देती है। आपने मैंने क्या बनना है? बारिश बनना है, सूरज बनना है, चाँद बनना है, हवाएं बननी है, ताकि मखलूक को नफ़ा दे सकें और उसके साथ जुड़ सकें। और इसी तरह से अल्लाह की रज़ा को पाने वाले जो काम हमने करने हैं, उसमें अल्लाह ताला की निशानियों पे गौर व फिक्र है, अक्ल से काम लेना है, झूठ नहीं बोलना, अल्लाह ताला के सिवा दूसरे सरपरस्त नहीं बनाने। रुकू नंबर 18, 18, 12 से 21, कुरान यकीन करने वालों के लिए रहमत है। अल्लाहुल्लज़ी सख़र लकुमुल बहर, अल्लाह ही है जिसने तुम्हारे लिए दरिया को ताबे बना दिया, ताकि इसके हुक्म से इसमें कश्तियाँ चलें और तुम इसका फजल तलाश करो, और ताकि तुम शुक्र बजा लाओ। और आसमान और ज़मीन की हर हर चीज़ को भी इसी ने अपनी तरफ से तुम्हारे लिए ताबे कर दिया है। जो गौर करें यकीनन इसमें बहुत सी निशानियाँ पा लेंगे। आप ईमान वालों से कह दें कि वो इन लोगों से दरगुजर करें जो अल्लाह के दिनों की तवक्को नहीं रखते। मेमोरियल डेज, अय्याम अल्लाह के लफ्ज़ को हाईलाइट कर लीजिए, ताकि अल्लाह ताला एक कौम को इनके करतूतों का बदला दे। जो नेकी करेगा वो अपने ज़ाती भले के लिए, और जो बुराई करेगा इसका वबाल उसी पर है। फिर तुम सब अपने परवरदिगार की तरफ लौटाए जाओगे। यकीनन हमने बनी इसराइल को किताब, हुकूमत और नबूवत दी थी, और हमने इनको पाकीज़ा और नफीस रोज़ियाँ दे रखी थी, और इन्हें दुनिया वालों पर फजीलत दी थी, और हमने इन्हें दीन की साफ साफ दलीलें दी। फिर उन्होंने अपने पास इल्म के पहुँच जाने के बाद भी आपस की ज़िद और बहस से इख्तलाफ बरपा कर दिया। ये जिन जिन चीज़ों में इख्तलाफ कर रहे हैं, इनका फ़ैसला क़यामत वाले दिन इनके दरमियान ख़ुद तेरा रब करेगा। फिर हमने आपको दीन की ज़ाहरी राह पर कायम कर दिया, बस आप इसी पर लगे रहें और नादानों की ख्वाहिशों की पैरवी में ना पड़ें। याद रखें कि ये लोग हरगिज़ अल्लाह के सामने आपके कुछ काम नहीं आ सकते। समझ लें कि ज़ालिम लोग आपस में एक दूसरे के रफ़ीक होते हैं, और परहेज़गारों का कारसाज अल्लाह ताला है। ये कुरान लोगों के लिए बसीरत की बातें और हिदायत और रहमत है उस कौम के लिए जो यकीन रखती है। क्या इन लोगों का जो बुरे काम करते हैं गुमान है कि हम इन्हें इन लोगों जैसा कर देंगे जो ईमान लाए और नेक काम किए? इनका मरना जीना यकसा हो जाएगा? नो नो, बुरा है वो फैसला जो वो कर रहे हैं। याद रखिए, करने वाले और ना करने वाले बराबर नहीं। तकाबुल सीखा आपने, कितना प्यारा है इस सूरत में। किस तरह समंदर अल्लाह की बताई हुई हदूद में रहकर बहता है। आपके मेरे लिए अमल की बात क्या है? सब कुछ कीजिए, खाएं, पिए, पहने, ओढ़े, खुश रहें, घर बनाएं, दुनिया घूमें, मक्का जाएं, मदीना जाएं, मगर अल्लाह की हदों को कभी पार ना करें। मसला गड़बड़ सिर्फ यहाँ पे होता है जब अल्लाह की हदों से आगे जाते हैं। और आयत 14 पे एक रिवायत है इब्ने अब्बास से, शान नज़ूल है ये इस आयत की, कि यह आयत हज़रत उमर के बारे में नाजिल हुई जब इनका मामला गज़वा बनी मुस्तलक यानी अब्दुल्ला बिन उबई के साथ हुआ था। ये आगे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, सूरत मुनाफिकून में यह किस्सा आएगा। इसको गज़वा मुरैसी भी कहते हैं और गज़वा बनु मुस्तलक भी कहते हैं। तो असल में जो कहानी हुई थी वो कुछ इस किस्म की थी कि अब्दुल्ला बिन उबई ने कुछ नबी सल्लम की शान में गुस्ताखियाँ की थी, और बाद में फिर इस बात पर झगड़ा हुआ था। और ये वाक़ मैं इंशाल्लाह आपको वहाँ पूरा सुना दूँगी। अपने लिए अमल की बात क्या है कि शुक्रगुजार बनना है, दरगुजर करना है, नेक अमल करना है, शरीयत की इत्तबा करनी है, बेइल्म लोगों की ख्वाहिशात की पैरवी नहीं करनी और मुत्तकी बनना है। रुकू नंबर 19, 19, 22 से 26, अल्लाह ने आसमान और ज़मीन को बरहक पैदा किया। व खलक अल्लाह समावाति वल अर्द, यानी ये भी मकसद से पैदा हुए हैं, बेमकसद नहीं है। और आसमान और ज़मीन को अल्लाह ने बहुत ही अदल के साथ पैदा किया, और ताकि हर शख्स को इसके किए हुए काम का पूरा पूरा बदला दिया जाए और इन पर जुल्म ना किया जाए। क्या आपने उसे भी देखा जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना माबूद बना रखा है? ये कहाँ मिलेगा? आईने में ढूंढिएगा, खुद को देखे, मत अपनी नंदो भावजों को ढूंढें। اپنی دوستوں کو مت ڈھونڈے، ہاں میری ایک دوست ہے وہ اپنی خواہش کی کو پوچھتی ہے، یہ میں میرا اپنا من اپنا پرانا پاپی برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ اللہ میں پکا سچا مومن بنا دے اور نفس کی جکڑ بندیوں سے آزاد کر دے، اور باوجود سمجھ بوجھ کے اللہ نے اسے گمراہ کر دیا ہے۔ نوٹ کرے، عقل ہوتی ہے لیکن استعمال نہیں کرتا، یا غلط جگہ پہ کرتا ہے، ایول جینیس۔ اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھ پر بھی پردہ ڈال دیا۔ اب ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ کے بعد کون ہدایت دے سکتا ہے؟ اور کیا اب بھی تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ انہوں نے کہا، ہماری زندگی تو بس دنیا کی زندگی ہی ہے، ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں، اور ہمیں اس دوبارہ زمانہ ہی مار دیتا ہے۔ جس کو مدر نیچر نہیں، آج لوگ کہتے ہیں یہ وہی جملے ہیں، یہ جینا مرنا یہ تو ایک روٹین پہ چل رہا ہے، پہیہ گھوم رہا ہے وغیرہ۔ دراصل انہیں اس کا علم ہی نہیں، یہ تو صرف قیاس اور اٹکل سے ہی کام لے رہے ہیں۔ اور پھر ان کے سامنے جب ہماری واضح اور روشن آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے پاس اس قول کے سوا کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ داداؤں کو لاؤ، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی تمہیں زندہ کرتا ہے، پھر وہی تمہیں مار ڈالتا ہے، پھر وہی قیامت کے دن تمہیں جمع کرے گا، جس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے، اکثر اکثر۔ دعا کریں کہ اللہ مجھے اکثر میں نہ کرنا۔ افرائیت من اتخذ، والی آیت کی شان نزول میں ایک روایت آتی ہے کہ قریش ایک زمانے تک ایک پتھر کو پوچھتے تھے، پھر جب اس سے اچھا پتھر مل جاتا تو اس پہلے پتھر کو پھینک دیتے اور ایک دوسرے پتھر کو پوچھنا شروع کر دیتے، اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ مجھے اجازت دیتے ہیں میں کمنٹ بول دوں، پہلے آئی فون 10 سے کھیلتے تھے، پھر 11 آ گیا تو اس کو چھوڑ کے 11 لے لیا، پھر کچھ دن اس پہ کھیلے تو 12 13 14 پھر ایکس، اور پھر پتہ نہیں کون سا ایکس آ گیا۔ یہ بت نہیں ہے، 3 سے 4 لاکھ روپے کا ایک فون ہے آپ کے پاکستان میں، اور ہر نیا فون آپ کو چاہیے بس، اور وہ بھی ایک نیا کیمرہ لگا کر آپ کو بیچتے ہیں۔ بھائی کیا ہے، فون ہی ہے نا، اس میں کیا ہوگا بھلا، کوئی اچھی خبریں آئیں گی؟ نہیں، یہ بت پوچھ رہے ہیں، ایک ایک الیکٹرانکس کی چیز کئی کئی لاکھوں کی آپ کی۔ اور آپ دیکھیے کہ یہ جو بتوں کو وہ پوچھتے تھے، کیا تھا اس بت سے نفع، تو آج کے فون سے نفع۔ فون تو میں نے ایک بات کر دی ہے، جو گیجٹس ہیں، جو اسپل کھیلتے ہیں، ویڈیو گیمز ہیں، جو ہر گھنٹوں بیٹھ کے خبریں دیکھتے رہتے ہیں، جو بڑی بڑی اسکرینوں کے عادی ہیں، تو ذرا اپنا اسکرین ٹائم چیک کیجئے گا، اور پھر کرتے بھی استعمال کریں یہ بھی دیکھیے گا۔ خواہش نفس معبود کیسے بنتی ہے، لکھیے ذرا اپنے لیے، بہت قیمتی سلائڈ ہے یہ۔ خواہش جس طرف لے جائے ادھر چل پڑنا، جو نفس کہے وہی کرنا، اپنی عقل کو اہمیت دینا، معاشرے کے رسم و رواج کو ترجیح دینا، اللہ کی بجائے لوگوں کی باتوں کو ماننا، نفس کی پرستش کرنا، خواہش نفس کو پوجنا ہے۔ اب چیک کیجئے گا ذرا آپ اس میں کہاں فٹ ہیں اور کہاں نہیں ہیں۔ کیا کرنا ہے؟ خواہش نفس کو اپنا معبود نہیں بنانا، علم آنے کے بعد گمراہ نہیں ہونا، حالات اور واقعات سے سبق لینا ہے، دنیا کی زندگی کو سب کچھ نہیں سمجھنا۔ رکوع نمبر 20 پارے کا آخری رکوع ہے، 27 سے 37۔ دنیا کی زندگی کے دھوکے سے بچنا ہے۔ وللہ ملک السماوات والارض، اور آسمان اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن اہل باطل بڑے نقصان میں پڑیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ ہر امت گھٹنوں کے بل گری ہوئی ہوگی، ہر گروہ اپنے نام اعمال کی طرف بلایا جائے گا، آج تمہیں اپنے کیے کا بدلہ دیا جائے گا۔ یہ ہے ہماری کتاب جو تمہارے بارے میں سچ سچ بول رہی ہے، ہم تمہارے اعمال لکھواتے جاتے تھے بس، لیکن جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے تو ان کو ان کا رب اپنی رحمت تلے لے لے گا، یہی صریح کامیابی ہے۔ لیکن جن لوگوں نے کفر کیا تو میں تو ان سے کہوں گا، کیا میری آیتیں تمہیں سنائی نہیں جاتی تھیں؟ پھر بھی تم لوگ تکبر کرتے رہے، اور تم تھے ہی گناہگار لوگ۔ اور جب کبھی کہا جاتا ہے کہ اللہ کا وعدہ یقیناً سچا ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں، تو تم جواب دیتے تھے کہ ہم نہیں جانتے قیامت کیا چیز ہوتی ہے، ہمیں کچھ یوں ہی سا خیال تو ہوتا ہے۔ دیکھیں آج امت مسلمہ کا بالکل یہی حال ہے، آئی تھنک قیامت آئے گی، یس آئی فیل، مائٹ بی، مے بی، آئی ڈونٹ نو، آئی ایم کنفیوز۔ ایک ینگ بچہ اپنی ماں کو کہتا ہے آئی ڈونٹ بلیو ان جنہ، کیا بن دیکھے دوست سے باتیں کرتی ہو، یعنی اللہ، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو ٹو جنہ، موم یو شوڈ گو ٹو جنہ، آئی ول ناٹ گو، موم ول دیر بی کانسرٹس، نو، ول بی دیر دس از نو، دین آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو دیر۔ माम तुम वहां भी ये कहती रहोगी नमाज पढ़ो कुरान पढ़ो, ये आपके मुस्लिम बच्चों की टोन है, पता नहीं मैंने कैसी बोला और मैं कैसी लगी, इट्स ट्रू। और इन पर अपने अमाल की बुराइयाँ खुल गईं और जिसका वो मजाक उड़ा रहे थे इसने इन्हें घेर लिया और कह दिया गया कि आज हम तुम्हें भुला देंगे जैसे कि तुमने अपने इस दिन से मिलने को भुला दिया था। तुम्हारा ठिकाना जहन्नुम है और तुम्हारा मददगार कोई नहीं, ये इसलिए कि तुमने अल्लाह की आयतों की हंसी उड़ाई थी और दुनिया की जिंदगी ने तुम्हें धोखे में डाल दिया था। बस आज के दिन ना तो ये दोजख से निकाले जाएंगे और ना इनसे उजर और माजरत कबूल की जाएगी। अब आगे क्या होगा ये इंसान खुद सोच ले। अब आगे बहुत प्यारी आयतें, बहुत ही प्यारी, इनका रिदम कभी तिलावत में सुने तो दिल खुश हो जाता है। फलिल्लाहिल्हम्द, बस अल्लाह की तारीफ है जो आसमानों और ज़मीन और तमाम जहानों का पालनहार है। तमाम बुजुर्गी और बड़ाई आसमानों और ज़मीन में उसी की है, वही गालिब और हिकमत वाला है। तो अल्लाह ताला का इंतकाम, आयत 34 को चेक कीजिएगा, जो अल्लाह को भूल जाएगा अल्लाह उसको भूल जाएगा और उनसे कह दिया जाएगा आज हम तुम्हें इस तरह नज़रअंदाज कर देंगे जैसे तुमने इस दिन की मुलाकात को नज़रअंदाज कर रखा था। फिर इसी तरह से आयत 34 के बारे में रिवायत है मुस्लिम 7438, अबू हुरैरा रावी हैं। रोज़े क़्यामत अल्लाह ताला अपने बास बंदों से फरमाएगा, ए फलां बंदे, भला मैंने तुझको इज्जत नहीं दी और तुझको सरदार नहीं किया और तुझको तेरा जोड़ा नहीं दिया और घोड़ों और ऊँटों को तेरा ताबे नहीं किया और तुझको छोड़ा कि तू अपनी कौम की रियासत करता और चौथाई हिस्सा लेता। तो बंदा कहेगा कि सच है, यानी कैसे इनकार करे, सच है। फिर आपने फरमाया तो हक ताला फरमाएगा, भला तुझको मालूम था कि तू मुझसे मिलेगा। बस बंदा कहेगा कि नहीं। तो हक ताला फरमाएगा कि अब हम भी तुझको भूलते हैं, यानी तेरी खबर ना लेंगे और तुझको अजाब से ना बचाएंगे जैसे तू हमें भूला हुआ था। सोचना चाहते हैं तो सोच लीजिए कैसा वक्त आने वाले और हम कितने ठंडे बैठे हैं। क्या सीखा? ईमान लाना और नेक अमल करना है, कुफर नहीं करना, तकब्बुर नहीं करना, क़यामत पर यकीन करना है, अल्लाह ताला की आयत का मजाक नहीं बनाना, दुनिया की ज़िंदगी के धोखे में मुब्तला नहीं होना। अल्लाह हमें इसकी तौफीक दे। यहाँ पारा पूरा हुआ। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।